समंदर पार से आए सपने। भारत में विदेशियों के लिए बिजनेस करना आसान नहीं रहा है। बावजूद इसके कई बिजनेसमैन स्टार्टअप शुरू करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। देश में ऐसे विदेशी CEO की कमी नहीं है जो बरसों से यहाँ कामयाब कंपनियाँ चला रहे हैं। इनकी कामयाबी की दास्तान बता रही हैं शेफाली भट्ट। जोश लियोन रोज सुबह हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में अपने ऑफिस बाइक से पहुँचते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 30 मिनट लगते हैं। जोश कहते हैं, यहाँ ड्राइविंग करते हुए मैं बस सलामती की दुआ करता रहता हूँ। हालांकि एक बार जब आप इस ड्राइविंग के आदी हो जाते हैं तो यह उतनी ख़तरनाक भी नहीं रह जाती। कोस्टारिका के 33 वर्षीय जोश 2 साल पहले अपना बिजनेस शुरू करने भारत आए थे। बिजनेस स्कूल के दोस्त प्रभदीप सिंह के साथ मिलकर वे मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप स्टंट प्लस चलाते हैं। हैदराबाद की गलियों में इतना घूम चुके हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि वे बाहरी हैं। कंपनियों की लंबी फहरिस्त। नेकुयान चोंग साउथ कोरिया के हैं। बेंगलुरु में रहने वाले 58 साल के चोंग ने $10 लाख के शुरुआती निवेश से गिफ्ट वाउचर्स उपलब्ध कराने वाली कंपनी गिफ्टिकॉन की शुरुआत की है। इसी शहर में रहने वाली ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर लिजी चैपमैन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जिस्ट मनी चलाती हैं। स्टार्टअप शुरू करने का सपना लेकर 48 साल के स्टीव हार्डग्रीव अमेरिका से भारत आए। उन्होंने एजुकेशन स्टार्टअप वर्थाना के लिए $7.5 करोड़ का इंतज़ाम किया है, ताकि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने वाली उनकी कंपनी की सर्विस को और बेहतर बनाया जा सके। वॉशिंगटन में पली बड़ी कैटी टेलर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन में पढ़ चुकी हैं। वह 2016 में भारतीय किसानों की मदद के लिए चलाए जा रहे MIT के सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई प्रोजेक्ट के सिलसिले में पुणे से जुड़ गईं। वे कहती हैं, MIT में काम करते हुए हम सिर्फ यहाँ की लोगों की ज़रूरतों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते थे। इस प्रोजेक्ट के दौरान किसानों से बातचीत करते हुए हमने पाया कि हमारा अंदाज़ा पूरी तरह से गलत था। अभी वे जिस वेंचर पर काम कर रही हैं उसके लिए उन्हें MIT सहित कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों से फंड मिला है। जाहिर है इनकी लंबी फहरिस्त है, असफल रहने के बावजूद टिके। दिलचस्प बात तो ये है कि नेकुयान चोंग भारत में अपना बिजनेस शुरू करने के पहले प्रयास में कुछ साल पहले असफल रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी नई कंपनी की नींव डाली। देश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन मार्केट को देखते हुए उन्होंने गिफ्टिकॉन की शुरुआत की। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट पारस सावला विदेशी वेंचरों को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी मदद उपलब्ध करवाते हैं। उनके पास ऐसे ग्राहकों की आने वाली कॉल्स में पिछले 2 साल में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वे कहते हैं, इनमें से ज़्यादातर की दिलचस्पी टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में थी। विशाल इंडियन कंज्यूमर मार्केट, टेक्नोलॉजी टैलेंट और सस्ता, ये ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से विदेशी एंटरप्रेन्योर भारत में वेंचर शुरू करना चाहते हैं। सावला जैसे लोगों की संख्या भी भारत में बढ़ रही है जो नई कंपनी शुरू करने के लिए विदेशी कारोबारियों को हर तरह की मदद उपलब्ध करवाते हैं। ये विदेशी एंटरप्रेन्योर या कंपनियों की फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी मदद करते हैं। भारत में बिजनेस स्थापित करने और कंपनी को रजिस्टर कराने जैसे कामों को वे आसान बना देते हैं। माइकल गिसलेन 57 साल के हैं। 1994 में स्वीडन से भारत शिफ्ट हुए माइकल बताते हैं, 90 के दशक में जब मैं भारत आया था तो विदेशी नागरिक होने की वजह से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में मुझे 1 साल लग गया था। ये काम अब हफ्ते भर में हो जाता है। दिलचस्प अनुभव। वैसे भारत में स्टार्टअप शुरू करने को लेकर विदेशी बिजनेसमैनों के अपने अपने अनुभव रहे हैं। जिन 2 खास क्षेत्रों में विदेशी बिजनेसमैनों को भारत में सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है वे हैं सीनियर टैलेंट को हायर करना और निवेशकों को पैसा देने के लिए राजी करना। लियोन हायरिंग का एक दिलचस्प वाकया याद करते हैं जिससे वे हैरान रह गए थे। उन्होंने उदयपुर के एक शख्स को जॉब ऑफर किया तो उन्होंने कहते हुए असमर्थता जताई कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वह ये जॉब करें। जवान हो चुके बच्चों के करियर में पेरेंट्स की दखलंदाजी लियोन को बड़ी अटपटी लगी। वे कहते हैं, जब हमारी उस शख्स से फ़ोन पर बातचीत हो रही थी तो मेरे कोफाउंडर प्रभदीप ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उसके पेरेंट्स से बात की। प्रभदीप ने उसके पेरेंट्स को हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड और इस कंपनी के विज़न के बारे में बताया। तब जाकर कहीं दो दिन बाद उसने हमें ज्वाइन किया। इस घटना के बाद से लियोन हर कैंडिडेट से उसके पेरेंट्स और आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। ऐसी स्टोरी बहुत कम है। न्यूयॉर्क के ग्रेग मोरन 2012 में बेंगलुरु आ गए थे ताकि अपनी सेल्फ ड्राइव कार रेंटल कंपनी शुरू कर सकें। जूम कार के कोफाउंडर ग्रेग कहते हैं, विदेशी एंटरप्रेन्योर को लेकर निवेशकों और प्रोफेशनलों के बीच आम डर ये रहता है कि पता नहीं ये कितने समय तक इंडिया में टिके रहेंगे। मैं जब यहाँ आया था तब ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं थे। आज जिस तरह से स्टार्टअप्स के साथ लोग काम करने को उत्सुक रहते हैं, तब वैसा नहीं था। लोगों के पास हमारे काम को लेकर तमाम तरह के सवाल होते थे। बेशक भारतीय बाजारों में स्टार्टअप के साथ आने की ख्वाहिशें रखने वाले विदेशी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जूम कार बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन जैसा कि प्रभदीप सिंह कहते हैं, ऐसी स्टोरी बहुत कम है। विविधता लाने की दरकार है। कनाडा की एंटरप्रेन्योर मरीसा ब्रोफमैन का भारत का अनुभव कुछ अलग है। 33 साल की यह पूर्व पत्रकार करीब एक दशक पहले वर्क असाइनमेंट पर भारत आई तो भारत से दिल लगा बैठी। 2011 में वे मुंबई आ गईं और डिजिटल एजेंसी की शुरुआत की। कई सारे क्लाइंट उन्हें जल्दी ही मिल गए। कुछ समय बाद उन्होंने वीगन फूड बिजनेस शुरू किया। वे कहती हैं, विदेशी के रूप में भारत में रहना महंगा होता चला गया, टैक्स बढ़ता गया। एक विदेशी और वह भी महिला के रूप में अपने फूड वेंचर में इन्वेस्टमेंट के लिए पुरुष निवेशकों से मिलना भी मेरे लिए चैलेंज था। नतीजा ये रहा कि मरीसा 2017 में टोरंटो लौट गईं। हालांकि यहाँ से जाने के बावजूद वे भारत से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। प्रभदीप सिंह कहते हैं, न्यू एज कंपनी में हमें विविधता लाने की ज़रूरत है। हमारे स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के कोफाउंडर्स ने तय किया कि काम में तेज़ी लाने के लिए हम घूस कतई नहीं देंगे। हालांकि मेरा कहना था कि घूस से काम तेज़ी से निपटेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तरह काम नहीं करना चाहते और उन्होंने किया भी नहीं। ब्राज़ील की पूर्व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अब बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के रूप में काम कर रही जेसी दना अराजो इस बात पर सिंह का समर्थन करती हैं, भारत में विदेशी एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काम करने के लिए एक नई सोच और नया नज़रिया अपना सकते हैं। अराजो 2016 में भारत आई थीं। बेंगलुरु में उन्होंने फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया, जिसे 2 साल पहले वे बेच चुकी हैं। पोल्यूशन और ट्रैफिक से यहाँ उनको परेशानी है, लेकिन वह यहाँ के लोगों की मुरीद हैं और किफ़ायती रहन सहन को यहाँ का प्लस पॉइंट मानती हैं। पोल्यूशन लेवल से परेशान जूम कार के ग्रेग मोरन भी हैं। वे अपने देश के पोर्टेबल वाटर को मिस करते हैं। हालांकि भारत में 3 दशक बिता चुके स्वीडन के माइकल गिसलेन का मामला कुछ अलग है। वे कहते हैं, मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले कई भारतीय कर्मचारियों से बेहतर तमिल बोल लेता हूँ।